दिन भर 30 मई बुधवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत में सरकारी बैंकों के कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर।
गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है वो जनधन हो या डिमोनेटाइजेशन हो, यहाँ तक कि आधार एनरोलमेंट भी अभी बैंक कर्मचारियों को करना पड़ रहा है।
पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल।
ये चार्जशीट ये दिखाता है कि ये जो खून हुआ गौरी लंकेश का वो निजी मामले के लिए नहीं हुआ है, उनकी विचारधारा के लिए हुआ है।
पाकिस्तान में रुपया हुआ कमजोर, दुनिया जहान में करेंगे चर्चा।
पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 2.5 महीने के इम्पोर्ट्स को फाइनेंस करने की कुव्वत रह चुकी है।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर देश भर में सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज और कल यानी दो दिन की हड़ताल पर हैं। दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। दो दिन तक चलने वाली इस हड़ताल के चलते लगभग 85,000 बैंक शाखाओं पर असर पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आज खबर आई कि तेल की कीमतों में 1 पैसे की कमी की गई है। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तेल की कीमतों पर चर्चाओं और बहसों का दौर शुरू हो गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा,
100 करोड़ विधायकों को खरीदने के लिए सरकार कर्नाटक में ऑफर देती है। प्रधानमंत्री जी अपने इश्तिहारों में 4,600 करोड़ रुपए 4 साल में खर्च करते हैं इश्तिहारों पर, और देश की जनता के लिए पेट्रोल के पदार्थों पर 1 रुपया का 1 पैसे का छूट। क्या यही मजाक देश की जनता के साथ ये सरकार करना चाहती है?
ये थे कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह। तेल की कीमतें लगातार 16 दिन बढ़ने के बाद आज कम हुई। 3 दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा के अपने पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में हैं। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ काली बाटा स्मारक का दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति जकार्ता में दोनों देशों के बीच करीब 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एक साझा प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगों के रूप में एक दूसरे की प्रगति एवं संपन्नता में हमारे साझा हित है, और इसलिए हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझे विजन और सिद्धांतों पर सहमति की है।
प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इंडोनेशिया के दौरे पर गए हैं, कल वे सिंगापुर रवाना हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली में जारी राजनीतिक गतिरोध लगातार बरकरार है। मार्च में हुए आम चुनाव के बाद से ही इटली में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। यहाँ की 5-स्टार मूवमेंट पार्टी का कहना है कि वह दक्षिणपंथी दल नॉर्थ लीग के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिशें करना चाहती है। लीग के नेता मैटियो सैल्विनी ने मध्यावधि चुनाव करवाने की पेशकश भी की है। इस बीच इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मतारेला ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कार्लो कोटेरेली से मुलाकात की है। हालांकि गठबंधन में मौजूद दोनों ही दल कार्लो के नाम पर सहमत नहीं हैं। पाकिस्तान में सिख समुदाय के हितों के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता की मंगलवार को पेशावर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उस कार्यकर्ता का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के अनुसार चरणजीत सिंह नामक यह युवक अपनी दुकान में बैठा था जब कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चला दी। अभी तक इस हत्या के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले भी पाकिस्तान में तालिबानी चरमपंथियों की तरफ से सिख समुदाय के लोगों पर हमले हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मूडीज ने भारत में निवेशकों के लिए आज अपनी रिपोर्ट जारी की है। मूडीज का अनुमान है कि साल 2018 में भारत की विकास दर में गिरावट की उम्मीद है। ये दर 7.3% तक जाने का अनुमान है। मूडीज ने अपने पिछले अनुमान में कठिन आर्थिक हालातों के बावजूद विकास दर 7.5% तक रहने का अनुमान लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग कमीशन को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिणी सागर में जापानी शिकारियों ने एक साल के भीतर लगभग 300 से अधिक मिंक वेल का शिकार किया, जिनमें से अधिकतर वेल मादा थीं और गर्भवती थीं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर संदीप सोनी के साथ। भारत में 21 सरकारी बैंकों के कर्मचारी अपने वेतन में होने वाली कथित मामूली वृद्धि के खिलाफ आज हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनकी हड़ताल 2 दिन तक जारी रहेगी। वहीं बैंक प्रबंधन का कहना है कि उनका मुनाफा इतना कम हो गया है कि वो अपने कर्मचारियों के वेतन में ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा है कि बैंक प्रबंधन ने हाल में हुई एक बातचीत में वेतन में मात्र 2% वृद्धि का ऑफर दिया। 2 दिनों पहले कर्मचारी संघ की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रबंधन 2% की ये बढ़ोतरी भी सभी कामगारों को देने को तैयार नहीं है। यूनियन इतनी कम वृद्धि के लिए तैयार नहीं थी और उसने 2 दिनों की हड़ताल करने का फैसला किया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के नंदू चौहान ने बीबीसी से कहा,
पिछले टाइम जब सेटलमेंट हुआ था 10वीं वेतन वृद्धि जब हुई थी तब ये जो परसेंटेज था वो 15% था। सो इट इज नॉट, हम अपेक्षा करते हैं कि ये कम से कम 15 के ऊपर ही उन्होंने निगोशिएट हमसे करना चाहिए।
बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी का मसला पिछले साल से लटका हुआ है। आज से शुरू हुई बैंक हड़ताल में तकरीबन 10 लाख कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। हड़ताल पर जाने वाले इन सरकारी बैंकों के पास देश की कुल बैंकिंग व्यवस्था का 70% हिस्सा है और समझा जाता है कि इसका प्रभाव आज बैंक के कामकाज में साफ तौर पर देखने में आया। प्राइवेट बैंकों में चेक क्लियरेंस का काम काफी धीमा रहा। इसका असर लोगों की तनख्वाह के बैंक ट्रांसफर पर भी पड़ेगा क्योंकि सामान्यतः कामगारों के वेतन इसी समय बैंकों में भेजे जाते हैं। कुछ ATM भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बैंक प्रबंधन का कहना है कि वो वेतन में अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकते क्योंकि उनका मुनाफा कम हो गया है। लेकिन अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के राम कुमार सभापति कहते हैं,
अब जो वजह है लॉस रिपोर्ट करने का, अगर आप 31 मार्च 2017 को देखोगे तो 1,54,000 का प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दिया है। इस बार लॉस का जो मेन वजह है ये जो है ये नेट लॉस है, मगर हर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। प्रोविजन के जो वजह है लॉस का, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज पॉलिसी जो चेंज किया RBI ने प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो NPA के लिए उन्हें किया है।
बैंक यूनियन का दावा है कि साल 2016-17 में उन बैंकों का ऑपरेटिंग मुनाफा 1,57,000 करोड़ रुपयों का था, लेकिन प्रबंधन टैक्स और NPO को मिलाकर नुकसान दिखाना चाहता है। राम कुमार सभापति दावा करते हैं कि हड़ताल से जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है।
इसकी जिम्मेदारी मैंने व्यवस्थापन पर जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 3 साल में हमने कभी ऐसे हड़ताल करने की कोशिश नहीं की। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है, वो जनधन हो या डिमोनेटाइजेशन हो, यहाँ तक कि आधार एनरोलमेंट भी अभी बैंक कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, जो हर केस में बैंक कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब अगर इसके बावजूद स्ट्रेंथ पे कमीशन लागू कर दिया आपने सरकार कर्मचारी को, सरकारी हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है उसमें हमने यही बात किया कि आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए।
बैंक यूनियन का कहना है कि अगर प्रबंधन अभी भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता तो वो हड़ताल की अवधि को और बढ़ा देंगे या फिर से दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं।
ये थी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। श्रोताओं, गौरी लंकेश का नाम याद है आपको? वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण पंथियों की आलोचक वही गौरी लंकेश जिनकी पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज 8 महीने के बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल किया है। क्या कहा गया है इस आरोप पत्र में, जानने के लिए मैंने बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी से अब से कुछ देर पहले बात की।
ये चार्जशीट ये दिखाता है कि ये जो खून हुआ गौरी लंकेश का, वो निजी मामले के लिए नहीं हुआ है, उनकी विचारधारा के लिए हुआ है और उनके अखबार में जो गौरी लंकेश पत्रिका जो वो चलाते थे उसमें जो उन्होंने हिंदू संगठन और RSS और BJP के खिलाफ जो भी लिखा करते थे उसके वजह से ये खून हुआ है चार्जशीट के अनुसार, क्योंकि यहाँ कोई निजी मामला नहीं है। नवीन कुमार और प्रवीण दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नवीन की खासकर इसलिए हुई है, पहली गिरफ्तारी हुई थी, उनके खिलाफ ये इल्जाम है कि उन्होंने वहाँ गौरी के खून के मामले में उनका बहुत बड़ा रोल है, और उसके अलावा अभी प्रवीण को भी इस मामले में उनका नाम लगा रहे हैं पुलिस, क्योंकि प्रवीण गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि प्रोफेसर KS भगवान के मामले में उन हत्या करने वाले थे 4 लोग, वो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मगर अभी पुलिस सिर्फ ये दोनों का नाम दिखा रहे हैं, नवीन और प्रवीण का नाम इस गौरी लंकेश के मामले में भी।
इमरान, चार्जशीट में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, क्या उनका संबंध किसी खास संगठन से है? कौन लोग हैं ये?
ये हिंदू संगठन है, नवीन अपना खुद एक हिंदू संगठन चला रहे थे मंड्या जिले में, वो मंड्या जिले के हैं, वो पिस्तौल और राइफल वाइफल दिल्ली के जो गैर कानूनी तरीके से जो खरीदते थे, और वो नवीन कुमार हैं, उनका तो बाकायदा उनका उन्हीं का एक हिंदू संगठन था। प्रवीण का नाम भी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है।
इमरान साहब, लगभग 8 महीने बीत गए हैं, 8 महीने का वक्त क्यों लग गया पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में, इसकी कोई वजह रही?
जी, वजह ये है कि जो ये पुलिस की जो SIT टीम है वो बहुत लोगों का पीछा कर रही थी, जो नवीन कुमार और ये जो हिंदू संगठन का जो नाम आ रहा है SIT की जांच में, ये पुलिस को लग रहा है कि ये लोग, ये सारा एक संगठन है जो प्रोफेसर कलबुर्गी के खून के मामले में भी उनका हाथ है। प्रोफेसर कलबुर्गी वही है जो लिंगायत समाज, जो बसवन्ना के लिंगायत समाज के अनुसार जो उनके वचना के अनुसार जो चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा था, वो जो वैदिक तरीके से जो लिंगायत समाज चल रहा है उसके विरोध में बहुत जगह वो भाषण करते थे, और उसके बाद उनका फोन हो गया। मगर उस मामले में भी अभी पुलिस की जांच ज्यादा दूर गई नहीं है। गौरी के केस में इसलिए गई है क्योंकि नवीन ये फायर आर्म्स इलीगल जो गैर कानूनी फायर आर्म्स के मामले में बिजनेस व्यवहार में है, तो इसलिए वो फंस गए हैं।
पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोप पत्र दाखिल, जानकारी दे रहे थे बेंगलुरु से वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी। श्रोताओं, भारत के कुछ एक हिस्सों को छोड़ दीजिए, अधिकतर हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर बारिश हुई है, उत्तर भारत वाले कह सकते हैं वाह गर्मी से राहत मिली होगी, लेकिन जहां बारिश हुई है जैसे कर्नाटक के मैंगलोर और कुछ अन्य जगहों पर, वहां सड़कों पर भरे पानी से लोगों को खासी दिक्कत भी हुई। बहरहाल, भारतीय मौसम विभाग ने इस साल बारिश कैसी होगी इसे लेकर अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मेरी सहयोगी गुरप्रीत कौर स्टूडियो में मौजूद हैं।
देखिए, इस भीषण गर्मी में भारतीय मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। विभाग ने कहा है कि देश में इस साल मानसून सामान्य रहेगा। पूर्व और उत्तर पूर्व के लिए कहा है कि वहाँ के कुछ इलाकों में मानसून सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है। फिलहाल अभी की बात करें तो देश के ज़्यादातर इलाकों में लोग बढ़ते पारे से बेहाल हैं। लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जब आप घर या ऑफिस में हैं तब तक ही ठीक है, जैसे ही घर से बाहर कदम रखो तो जैसे लगता है कि उबलने लगे हैं। गर्मी का ये हाल है। अब क्या करें, किसी ना किसी काम से तो बाहर जाना ही पड़ता है, और बाहर निकलते हैं तो आप छाते या फिर जूस उसका कोई सहारा लेते हैं, तब आपको थोड़ी राहत मिलती है। अब आप सोचिए कि ओरई शहर के लोगों का क्या,
उत्तर प्रदेश
जी, वहाँ पे लोगों का क्या हाल होगा जहाँ 47.5 डिग्री पारा पहुँच चुका है।
लगभग 48 डिग्री ही हो गया
जी, लेकिन कुछ वहाँ पे यूपी के इलाकों में थोड़ी राहत भी लोगों को मिली है। हल्की बारिश के साथ तूफान आने की खबर आ रही है, वहाँ पे आया है। बारिश की वजह से वाराणसी, गोरखपुर, फैज़ाबाद, लखनऊ और बरेली डिवीज़न में तापमान कुछ गिरा है। चढ़ते पारे की वजह से पानी की किल्लत भी कहीं कहीं देखने को मिल रही है। हिमाचल के शिमला में तो हाल बहुत ही बुरा है, लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा। वहीं हिमाचल के कांगड़ा में स्कूलों के समय में कुछ बदलाव किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उन्हें गर्मी से बचाया जा सके। जो समय दोपहर 3 बजे तक का था, अब कहा गया है स्कूलों को कि वो 12:30 बजे बच्चों को छोड़ दें ताकि जो कड़कती धूप है उससे बच्चे बच पाएँ। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए कि वहाँ पर जो तापमान है, अधिकतम तापमान 4 जून तक 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। और अगले 2 दिन में उत्तर भारत मध्य और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, और बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई कई इलाकों के लिए। यूपी के लिए कहा है कि बारिश के साथ तूफान आने की संभावना है कई इलाकों में। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आज से हीट वेव धीरे धीरे थोड़ी कम हो सकती है।
अब गुरप्रीत, ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान कितना सटीक साबित होता है। श्रोताओं, इस साल CBSE के 10वीं 12वीं के नतीजे कुछ ऐसे आए हैं कि छात्र छात्राओं ने 500 में से 499 तक नंबर लिए हैं। 90% से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि कई लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हमारे ज़माने में इतने नंबर नहीं मिलते थे, आजकल ज़्यादा नंबर मिलते हैं वगैरह वगैरह। वैसे क्या वाकई ऐसा है? क्या बीते वर्षों में परीक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन आया है जिसकी वजह से नंबर ज़्यादा मिलने लगे हैं? यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गांगुली से बात की।
ये जो ट्रेंड है ये वर्ष 1990 से प्रारंभ हुआ था, जबकि ब्लू प्रिंट और क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड एग्जाम्स में परिवर्तित किए गए थे, उसके बाद मार्किंग स्कीम्स को चेंज किया गया है। इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स है, ये एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसका कारण मुख्य रूप से यह है कि नेशनल बोर्ड के साथ प्राइवेट स्कूल ज्यादा संख्या में है, तो प्राइवेट स्कूल की जो टीआरपी है कि किस प्रकार के उनके बच्चे जो है अधिक से अधिक जो है अंक प्राप्त करें, और इतना ज्यादा प्रीमियम है परफॉर्मेंस पर, पूरे वर्ष पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे से ये कोशिश कराया जाता है कि उनको इस प्रकार से कोच करें, उनको इस प्रकार से जो है मॉक टेस्ट में अपीयर कराया जाए जिससे उनके बच्चे जो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो मुख्य रूप से इसके तीन कारण है, एक तो जो ब्लू प्रिंट और क्वेश्चन पेपर के डिजाइन में परिवर्तित किया गया 1990 के बाद, नंबर वन, नंबर टू मार्किंग स्कीम्स में अकॉर्डिंगली परिवर्तन किया गया, और तीसरा है कि आज जो इतना प्रीमियम है परफॉर्मेंस पर, उस प्रीमियम इतना होने के कारण बच्चे केवल एक ही चीज को देखते हैं कि किस प्रकार के रोट लर्निंग करके जो है अधिक से अधिक अंक जो है हम इम्तहान में प्राप्त करें। जो बच्चों में इमेजिनेशन होना चाहिए, जो बच्चों में इनोवेशन आनी चाहिए, जो बच्चों में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है।
क्वेश्चन पेपर में किस तरह से बदलाव आए हैं और मार्किंग सिस्टम में क्या बदलाव आया है?
देखिए, आज से 40 साल पहले जब हम लोग स्कूली जीवन में देते थे, आप क्वेश्चन पेपर को देखें, अधिक से अधिक जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, 10 या 12 क्वेश्चन आते थे, उसमें से कहते बच्चे जो है 7 या 8 अटेम्प्ट करते थे। 90 के दशक के बाद ये जो परिवर्तन हुआ है कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट पूछे जाए, सब्जेक्टिव पर ध्यान ना दिया जाए, ताकि बच्चे पूरे सिलेबस को पूरे उस चीज को अध्ययन करें, तो ये चीज जो पैटर्न में चेंज हुआ है जिसके कारण ऑब्जेक्टिविटी आई है, वस्तुनिष्ठता आई है, और जिसके फलस्वरूप मार्किंग स्कीम में परिवर्तन किया गया है कि बच्चे का अगर एक शब्द में अंक सही है तो उसका पूरा परिमार्क दिया जाए, न कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 में से आप 7 दे दें, 6 दे दें, तो ये पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अंक स्फीति इसके कारण प्योरली हो। अंक स्फीति का कारण एक कारण ये भी है कि हमारे आगे की जो भी पढ़ाई है, हमारे आगे के जो भी भर्तियां हैं, आज जो वो जो एलिमिनेशन प्रोसेस पर आधारित है कि इंटायर जो आगे की प्रक्रिया है वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पर आधारित है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पर आधारित नहीं है, जिसके कारण एक होड़ लगी हुई है अंक स्फीति की ओर। हर बच्चा चाहता है कि हम 90% के कैटेगरी में हम आ जाए जिससे हमको सही कॉलेज एडमिशन मिले।
सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गांगुली से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह। आज इंतज़ार होगा आपको दुनिया जहान का। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन दिनों मुश्किल में है। पाकिस्तानी रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और वहां विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार गिर रहा है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान को चीन से मदद मिल रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में क्यों है और उसकी मदद के ज़रिए चीन क्या हासिल करना चाहता है, और क्या इस वजह से भारत के भी हित प्रभावित हो रहे हैं? इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने इन्हीं सवालों की पड़ताल की है।
दुनिया जहान। अब से 3 बरस पहले यानी अप्रैल 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान में थे।
China will assist Pakistan in strengthening its capacity for fighting terrorism and ensuring security.
जिनपिंग ने पाकिस्तान की संसद में वो भरोसा दिया जिसकी पाकिस्तान को अरसे से चाहत थी। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और साझा विकास के लिए चीन की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिया। तब कम ही लोगों को ये अंदाजा था कि आने वाले वर्षों में चीन पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की बैसाखी बनने जा रहा है। पाकिस्तान उस वक्त भी निवेश के लिहाज से माकूल मुल्क नहीं था, लेकिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक उसके कई मददगार थे। लेकिन शायद चीन बदलते वक्त की आहट काफी पहले भांप चुका था।
You have all heard that President Trump's comments made about Pakistan.
जनवरी 2018 में संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने पाकिस्तान पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया और उसे मिल रही करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद पर रोक लगाने का ऐलान किया। कच्चे तेल की कीमत और आयात के बढ़ते बिल के बीच महज 5 महीने के अंदर दिक्कतें उभर कर सतह पर आ गईं। मई के महीने में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार कम होते जाने की खबर मीडिया में छा गई। पाकिस्तान के अखबार डॉन के वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम हुसैन अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की तस्वीर पेश करते हैं।
पाकिस्तान के पास कोई तकरीबन 2.5 महीने के इम्पोर्ट्स को फाइनेंस करने की कुव्वत रह चुकी है। अगर ये मजीद गिरती रही और 2 महीने से नीचे चली गई, फिर कह सकते हैं कि एक सीरियस सिचुएशन हो गई है। जब ये 1 महीने की इम्पोर्ट कवर टच कर जाएगी ये लेवल, फिर कहा जा सकता है कि एक क्राइसिस सिचुएशन आ गई है। काफी माहरीन के मुताबिक इस किस्म की सिचुएशन कोई 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर पैदा हो सकती है, अगर बहुत तेजी में किसी किस्म की करेक्टिव एक्शन ना ली गई।
साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देकर उबारा था, लेकिन तब पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध गहरे थे। संकट के मौजूदा दौर में पाकिस्तान को मदद के लिए एक ही मुल्क दिख रहा है, वो है चीन। 3 साल पहले पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक में $46 अरब निवेश का भरोसा देने वाला चीन मौजूदा वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था संभालने के लिए $5 अरब कर्ज दे चुका है और आगे भी पाकिस्तान की झोली भरने को तैयार है। लेकिन क्यों? इस सवाल पर चीन की राजधानी बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार एसडी गुप्ता कहते हैं,
इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉलोनी चीन बनाना चाहती है। उनकी मिलिट्री कारण है, पाकिस्तान से भारत पे दबाव डाला जा सकता है। सीपेक का जो रूट है वो समुन्द्र तक जाता है, चीन को समुन्द्र का कनेक्शन की जरूरत है।
जाहिर तौर पर चीन मददगार दिखता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का दावा है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किल को बढ़ाने में उसकी भूमिका अहम है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने की वजह गिनाते हुए खुर्रम हुसैन कहते हैं,
पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत तेजी तार से चढ़ रहे हैं। उसमें काफी हद तक सीपेक के हवाले से जो मशीनरी इम्पोर्ट हो रही है उसका भी रोल है, अलबत्ता इसमें ऑयल प्राइसेस उनका भी रोल है, और काफी हद तक कंज्यूमर आइटम्स जो इम्पोर्ट हो रही है, मिसाल के तौर मोबाइल फोन्स, उनका भी इसमें रोल है।
पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था के कई जानकारों को ये भी लगता है कि उनका देश चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कैसर बंगाली की राय है कि चीन के साथ हुए समझौतों में पाकिस्तान के हितों की अनदेखी हुई है।
इस वक्त जो चाइना का इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसने पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स बढ़ा दिए हैं चाइना से, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाए। वो पाकिस्तान की गलती थी, उन्होंने उस अग्रीमेंट को सही नेगोशिएट नहीं किया, वन साइडेड अग्रीमेंट था।
चीन पाकिस्तान के इर्द गिर्द कर्ज का चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा है और ये मदद मुफ्त नहीं है। एसडी गुप्ता डॉन अखबार के हवाले से बताते हैं कि कर्ज 18% की दर से दिया गया है। ये ब्याज दर वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले कर्ज की दर से कहीं ऊंची है। पाकिस्तान की मजबूरी ये थी कि चीन के अलावा वहाँ कोई और निवेश करने को तैयार नहीं था।
चीन कभी भी दान दक्षिणा में नहीं मांगती है, चीन रिटर्न्स मांगती है। चीन को अगर बिजनेस रिटर्न नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलिट्री रिटर्न्स मांगती है। चीन का आज फोकस अरेबियन सी तक जाना है। अरेबियन सी को अगर वो कनेक्ट कर लेंगे किसी भी हालत में तो मुंबई बहुत दूर नहीं है उनके लिए स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, और ओमान दूर नहीं है, और सऊदी अरेबिया के साथ भी उसके बहुत नजदीक आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान उनके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसके लिए वो नुकसान उठाने को तैयार है, क्योंकि $50 बिलियन अगर पूरा भी चला गया, डूब गया, तो बहुत बड़ा नुकसान है।
तो चीन आखिर पाकिस्तान पर दांव खेलकर हासिल क्या करना चाहता है? क्या वो पाकिस्तान में नीति तय करने की हैसियत चाहता है? वरिष्ठ पत्रकार खुर्रम हुसैन बताते हैं कि पाकिस्तान में कई विशेषज्ञ ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं।
एक चीज जो यहाँ के माहिरीन भी बार बार अब रेज कर रहे हैं कि अगर ये चीन के लोन की तादाद चढ़ती रही तो चीन में एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क को इस नजर से हमेशा फिक्स किया जाए कि इन लोन्स की अदायगी जो है वो कायम रहे।
अर्थशास्त्री कैसर कहते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान में चीन ने वो स्थिति हासिल नहीं की है, लेकिन अगर उस पर निर्भरता बढ़ी तो हालात मुश्किल हो भी सकते हैं।
चाहे वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हो या वार के एडिटोरियल्स हैं और कॉलमनिस्ट हैं, ये सब बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं, कंसर्न्स हैं बहुत ज्यादा कि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट जा रही है वो कोई मुनासिब नहीं है।
एसडी गुप्ता की राय है कि अगर चीन पाकिस्तान में नीति प्रभावित करने की स्थिति हासिल कर लेता है तो वहां लोकतंत्र, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर भी खतरा हो सकता है और इसका ताप भारत को भी महसूस करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान में अगर दिन खराब आते हैं उससे हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना दबाव हम पर आएगा। अगर पाकिस्तान चीन पर निर्भर हो जाता है और चीन पाकिस्तान की पॉलिसी चलाती है तो आप समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में चीन बैठा हुआ है, तो आपके लिए तो वो नुकसानदायक, आप तो आसानी से पाकिस्तान को डील कर सकते चीन से नहीं। ऐसा वक्त आ गया कि भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान से कम रिश्तों को थोड़ा सा सफन करे।
पाकिस्तान के साथ साझेदारी में पड़ना भले ही चीन का भारी दिखता हो लेकिन खेल के सारे मोहरे उसके हाथ में नहीं है। अमेरिका के शब्दों में डबल गेम का महारथी पाकिस्तान भी बाजी पलटने का मादा रखता है। वरिष्ठ पत्रकार एसडी गुप्ता।
चीन कोशिश करता है कि पाकिस्तान पर दबाव डाले, पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि उल्टा चीन को फंसा दे, क्योंकि चीन आज निर्भर है पाकिस्तान पर। सारी दुनिया में बेल्ट एंड रोड का सक्सेस कहाँ है, तो एक ही जगह में है, तो पाकिस्तान शोकेस है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सरकार अगर कोई भी अड़चन डालती है, यहाँ तक कि तालिबान अड़चन डालती है, अगर मिलिट्री वाले तालिबान के थ्रू से अड़चन डलवा रहे हैं तो चीन के हाथ पैर सूज जाए।
दूसरी तरफ चीन ये भी जाहिर नहीं करना चाहता है कि वो कर्ज देकर किसी देश की संप्रभुता पर काबू करना चाहता है। इससे नेपाल, श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक उसके हित प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और राजनीति के जानकार चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने को लेकर चौकन्ना रहने की हिदायत दे रहे हैं। हालांकि जमीन पर स्थिति ये है कि चुनावी साल में भी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति बहस का बड़ा मुद्दा नहीं है। कैसर ये दावा भी करते हैं कि राजनीतिक दल हों या विशेषज्ञ, उन्हें ये उम्मीद है कि बीते 3 दशकों की तरह पाकिस्तान इस बार भी मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता पा सकता है।
पाकिस्तान की तारीख कुछ ऐसी रही है कि हम क्राइसिस के एच पर जाके रिकवर कर जाते हैं। अगर वही पास्ट हिस्ट्री का ट्रेंड बरकरार रहा तो उम्मीद है कि हम किनारे से वापस आ पाएंगे।
लेकिन एसडी गुप्ता आगाह करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन के कर्ज की बड़ी कीमत सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं चुकानी होगी, भारत जैसे उसके पड़ोसी मुल्क पर भी असर दिखेगा।
दुनिया जहान में वात्सल्य राय की प्रस्तुति के बाद खेल समाचारों के लिए इंदु पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं।
खेल समाचारों में आज बात करते हैं 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी सेरेना विलियम्स की, जिन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में वो पहुंच गई हैं। उन्होंने चेक रिपब्लिक की क्रिस्टियाना पिल्सकोवा को 7-6, 6-4 से हराया। पिछले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद से ये उनकी पहली जीत है। 36 साल के इस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम में बॉडी हगिंग कैट सूट में वापसी की है और सबकी निगाहें उन पर रहीं। और फ्रेंच ओपन में ही भारत के यूकी भामरी पहले ही दौर में बाहर हो गए और रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में आ गए हैं। टेनिस एक्सपर्ट नंदन बल आगे की रणनीति को लेकर के क्या कहते हैं?
रोहन बोपन्ना का क्ले पे परफॉर्मेंस लास्ट ईयर भी काफी अच्छा रहा है और उनकी पार्टनरशिप भी एडवर्ड के साथ जो है बहुत 2 साल से अभी एक साथ खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस उनसे अच्छी एक्सपेक्ट तो जरूर की जा सकी है। कम से कम प्री क्वार्टर्स तो मेरे हिसाब से गारंटीड होनी चाहिए और फिर उसके बाद जिस फॉर्म से खेलते हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्री क्वार्टर्स क्वार्टर्स तो मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए।
विश्व के नंबर एक खिलाड़ी राफेल नडाल, 23 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सेरेना विलियम्स, मारिया शरापोवा और तीसरी वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरोजा तथा मेरिन सिलिक दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं।
इंदु पांडे से खेल समाचारों के बाद खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर देश भर में सरकारी बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो गई। इस हड़ताल में लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारियों के शामिल होने का अनुमान है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आज तेल की कीमतों में 1 पैसे की कमी आई। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आम जनता के साथ भद्दा मजाक बताया। 3 दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा के अपने पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में हैं। राजधानी जकार्ता में उन्होंने करीब 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्रा ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।